بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज बुधवार है, बहमन की 26, रजब की 24 और फरवरी की 15 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे एक विशेष कार्यक्रम, और अंत में आप सुनेंगे आज कल। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि ईरान की आज़ादी का ध्वज तबरेजियों के हाथ में है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि ईरान और चीन की दोस्ती दुनिया की सुरक्षा में प्रभावी है। मानव अधिकारों के आरोपों के कारण चीनी गवर्नर को अपना लंदन दौरा रद्द करना पड़ गया। भारतीय आयकर विभाग ने बीबीसी के कार्यालयों की तलाशी के साथ कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
पूर्व पहलवी तानाशाही शासन के खिलाफ तबरेज की जनता के ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर ईरान के आजरबैजान शर्की प्रांत के लोगों ने इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई से मुलाकात की है। बुधवार की सुबह हुई इस मुलाकात में वरिष्ठ नेता ने कहा कि 22 बहमन को ईरानी राष्ट्र ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि वो इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है। उन्होंने कहा कि समर्थन की आवाज़ सबसे ऊंची थी, हालांकि विरोधी आवाजें भी थीं, और दुनिया के दुश्मन मीडिया साम्राज्य ने कि जिस पर ज़ायूनियों और अमरीकियों का कब्जा है उन आवाज़ों को अधिक ऊंचा करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। राष्ट्र की आवाज़ दूसरों की आवाज़ पर हावी हो गई। वरिष्ठ नेता का कहना था कि 29 बहमन सन 1356 हिजरी शमसी की तारीख ईरान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख है। ये ऐसी तारीख थी जिसने राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण किया। उससे पहले कुम की जनता ने जो आंदोलन शुरू किया था, तबरेज के लोगों ने उसे एक क्रांति में बदल दिया। इस घटना ने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तानाशाही शासन इतना बेबस हो गया था कि उसने सड़कों पर टैंक उतार दिए थे और लोगों का नरसंहार किया था, लेकिन तबरेज के नागरिक पीछे नहीं हटे। उन्होंने कुर्बानी दी और खून दिया और आंदोलन को राष्ट्रव्यापी कर दिया। उसके बाद एक साल से भी कम समय में शाही शासन का पतन हो गया। इसे कहते हैं ऐतिहासिक घटना। इस साल 22 बहमन को भी ईरानी राष्ट्र ने कुछ ऐसा ही प्रतिरोध दिखाया है। अगर हम इस दृष्टि से इसका जायजा लेंगे तो देखेंगे कि लोग सड़कों पर निकल कर आए। सड़कों पर लोगों के आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोग प्रतिरोध के उद्देश्य से बाहर निकले।
इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि तेहरान और बीजिंग के बीच दोस्ती का रिश्ता इलाके और दुनिया की सुरक्षा में प्रभावी है। बीजिंग की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रईसी ने मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात में आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार और ईरान व चीन के बीच स्ट्रैटेजिक सहयोग के समग्र समझौते को अमली जामा पहनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे इलाके की शांति की स्थिरता में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ईरान और चीन कठिन परिस्थितियों के मित्र हैं, जिससे अन्य हालात में भी दोस्ती और सहयोग का रास्ता साफ होता है। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि चीनी राष्ट्रपति इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता के सम्मान पर जोर देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकपक्षीय नीतियों के खिलाफ हैं। ईरान पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को हटाए जाने के विषय पर होने वाली वार्ता में चीन की सार्थक भूमिका की सराहना करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने अमरीका और यूरोपीय देशों की वादा खिलाफी का जिक्र किया और कहा कि पश्चिमी देशों से ईरान के बारे में एक बार फिर कैलकुलेशन की गलती हुई। उन्हें यह नहीं पता कि ईरान की जनता इस समय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इस मौके पर शी जिनपिंग ने ईरान और चीन के संबंधों में विस्तार की प्रक्रिया का हवाला देते हुए स्ट्रैटेजिक सहयोग के दस्तावेज को लागू किए जाने पर जोर दिया और कहा कि चीन ईरान के साथ संबंधों को विस्तार देने का पुख्ता इरादा रखता है।
मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के चलते चीन के शिनजियांग प्रांत के गवर्नर को अपना लंदन दौरा रद्द करना पड़ा है। ब्रिटेन के सांसदों ने सरकार से अपील की थी कि एरकिन थुनियास को लंदन यात्रा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 2021 में ब्रिटेन की संसद में शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के खिलाफ अपराध और नरसंहार के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि चीन की सरकार सुनियोजित तरीके से अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों की जातीय सफाया कर रही है। बुधवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि ऐसा लगता है कि एरकिन थुनियास ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि थुनियास आधिकारिक दौरे पर लंदन नहीं आ रहे थे और न ही उनकी मुलाकात किसी मंत्री से होनी थी। चीन पर वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है। आरोप है कि शिनजियांग प्रांत में हजारों वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चीन पर मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाए थे, हालांकि चीन वीगर मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करता रहा है।
भारत में आयकर विभाग ने बीबीसी के कार्यालयों की तलाशी का अभियान शुरू कर दिया है। मुंबई और नई दिल्ली स्थित बीबीसी के कार्यालय में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां तलाशी ली गई। इस दौरान इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बीबीसी के कर्मचारियों से पूछताछ भी की। बीबीसी प्रेस ऑफिस की ओर से एक बयान में कहा गया है कि हम अपने कर्मचारियों का मदद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम सामान्य दिनों की तरह चलता रहेगा। हम अपने ऑडियंस को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले बीबीसी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से विश्व स्तर पर एक नई बहस शुरू हो गई थी और भारत सरकार ने इस फिल्म के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे बैन कर दिया था। कुछ गलियारे इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री के प्रकरण से जोड़कर देखते हैं। विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर कहा कि यह निराशा का धुआं है और यह दर्शाता है कि मोदी सरकार आलोचना से डरती है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हम डराने धमकाने के इन हथकंडों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया अब और नहीं चल सकता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी को दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर संस्था को मौका दिया जाता है तब तक जब तक आप जहर नहीं उगलेंगे। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि ये तलाशी कानून के दायरे में है और इसकी टाइमिंग का सरकार से कोई लेना देना नहीं है।
जॉर्डन के विदेश मंत्री ने दमिश्क की अपनी यात्रा के दौरान सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद से मुलाकात की है। سیریا کی سرکاری سماچار ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق جارڈن کے ودیش منتری ایمن السفدی بدھوار کو دمشق پہنچے جہاں انہوں نے راشٹرپتی اسد سے ملاقات کی۔ غورطلب ہے کہ 6 فروری کو تڑکے سیریا اور ترکیے میں 7.8 تیورتا والا شکتیشالی بھوکمپ آیا تھا جس سے دونوں دیشوں میں بڑی تباہی پھیلی تھی۔ جارڈن کے ودیش منتری کے ساتھ سیریائی بھوکمپ پیڑتوں کے لیے اس دیش کا ایک ویمان 12 ٹن چکتسا سہایتا لے کر دمشق پہنچا۔ سیریا میں 2011 میں شروع ہوئے سنکٹ اور گرہ یدھ کے بعد سے کسی جارڈن کے اچ ادھیکاری کی یہ پہلی دمشق یاترا ہے۔ جارڈن سمیت ادھیکانش عرب دیشوں نے اس سنکٹ کے دوران سرکار ورودھی اور تکفیری آتنکوادی گروہوں کا سمرتھن کیا تھا۔ سیریا میں داعش کی ہار کے بعد دونوں دیشوں کے سمبندوں میں تیزی سے سدھار ہو رہا ہے۔
دکشنی ترکی اور اتری سیریا کو چپیٹ میں لینے والے بھیشن بھوکمپ میں مرنے والوں کی سنکھیا 41,000 کے پار ہو گئی ہے۔ دونوں دیشوں میں ملبے کے نیچے سے اور بھی شو نکالے گئے ہیں، جبکہ اب کسی کے جیوت بچے ہونے کی آشا لگ بھگ سماپت ہو گئی ہے۔ بھوکمپ کو 8 دن بیت چکے ہیں۔ ترکی کے سینک ویمان استنبول پہنچنے والے مانویہ سہایتا بھوکمپ سے پربھاوت علاقوں میں پہنچا رہے ہیں۔ ترکی کے آپدا پربندھن وبھاگ کا کہنا ہے کہ زمینی راستے سے آنے والی سہایتا کو بھی پربھاوت علاقوں میں پہنچانے کے لیے ضروری تیاریاں پوری کی جا چکی ہیں۔ سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو اینٹونیو گوٹیرس نے سیریا میں بھوکمپ پیڑتوں کی مدد کے لیے اگلے تین مہینے میں $400 ملین کی سہایتا ایکترت کیے جانے کی اپیل کی ہے۔ اسی پرکار کی اپیل ترکی کے بھوکمپ پیڑتوں کی مدد کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ گوٹیرس نے سنیکت راشٹر سنگھ کے سدسیہ دیشوں سے کہا ہے کہ وہ 50 لاکھ سیریائی ناگرکوں کی مدد کے لیے تتکال حرکت میں آئیں۔ اس بیچ امارات نے کہا ہے کہ وہ سیریا اور ترکی کے بھوکمپ پیڑتوں کے لیے سہایتا بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ امارات اب تک سیریا کو 30 ویمان مانویہ سہایتا بھیج چکا ہے اور اتنی ہی سہایتا ترکی کو بھی بھیجی ہے۔ وہیں سنیکت راشٹر سنگھ کا کہنا ہے کہ انومان سے لگتا ہے کہ 70 لاکھ سے ادھک بچے سیریا اور ترکی میں بھوکمپ سے پربھاوت ہوئے ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ ترکی میں 45 لاکھ اور سیریا میں 25 لاکھ سے ادھک بچے بھوکمپ کی وجہ سے پربھاوت ہوئے ہیں۔ اسلامی گنراجی ایران شروع سے ہی بھوکمپ پیڑتوں کی ہر طرح کی مدد کر رہا ہے۔
امریکی راجہ ساؤتھ کیرولائنا کی پور گورنر اور سنیکت راشٹر سنگھ میں امریکہ کی پور راجدوت نکی ہیلی نے 2024 میں ہونے والے راشٹرپتی چناؤ میں ریپبلکن پارٹی کا امیدوار بننے کی گھوشنا کی ہے۔ انہوں نے یہ گھوشنا ایسے سمے میں کی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی ایک بار پھر پارٹی کا امیدوار بننے کی اچھا جتا چکے ہیں۔ آج سے ایک دشک پہلے نکی ہیلی نے 39 سال کی عمر میں امریکہ کی سب سے یوا گورنر بننے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنت ایران کی آواز۔ شوتاؤ راج نیتک چرچا کے دینک کاریہ میں محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ ایران اور چین کے راشٹرپتیوں نے منگلوار کو بیجنگ میں بھینٹ وارتا میں پرسپر سمبندھوں میں وستار پر بل دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات بل دے کر کہی کہ اسلامی گنتنت ایران اور چین کے شتروؤں کے دباؤں کے باوجود دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں وستار ہوا ہے۔ ایران اور چین کی اور سے پرسپر سمبندھوں کو وستر کرنے پر زور کئی آیاموں سے سمیکشا یوگ ہے۔ امریکہ اور یورپی دیش سیریا کے بھوکمپ پربھاوت علاقوں میں مانویہ سہایتا بھیجنے کے سلسلے میں لگاتار بہانے بازی کر رہے ہیں، جبکہ اس بیچ سیریائی سرکار نے آتنکیوں کے نینترن والے علاقے میں سبھی سیریائی جنتا کے لیے سہایتا بھیجنے کا سلسلہ آرمبھ کر دیا ہے۔ لیہ اور کرگل کی جنتا نے آج دلی کے جنتر منتر پر پردرشن کیا۔ لیہ اور کرگل کی پردرشنکاری جنتا کی ایک مانگ یہ ہے کہ لداخ کو سمپورن راج کا درجہ دیا جائے۔ प्रदर्शनकारी लोगों और जनता ने भारत की केंद्र सरकार से अपनी मांगों को यथाशीघ्र स्वीकार कर लिए जाने की मांग की है। ईरान और चीन के राष्ट्रपतियों ने मंगलवार को बीजिंग में भेंट वार्ता में परस्पर संबंधों में विस्तार पर बल दिया। सैयद इब्राहिम रईसी ने ये बात बल देकर कही कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और चीन के शत्रुओं के दबावों के बावजूद दोनों देशों के संबंधों में विस्तार हुआ है। ईरान और चीन की ओर से परस्पर संबंधों को विस्तृत करने पर जोर कई आयामों से समीक्षा योग्य है। समीक्षा पेश करें साथ ही कायम रिजवी।
ईरान और चीन के राष्ट्रपतियों ने मंगलवार को बीजिंग में भेंटवार्ता में परस्पर संबंधों में विस्तार पर बल दिया। सैयद इब्राहिम रईसी ने ये बात बल देकर कही है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान और चीन के शत्रुओं के दबावों के बावजूद दोनों देशों के संबंधों में विस्तार हुआ है। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि उनका देश ईरान के साथ संबंधों में विस्तार पर कटिबद्ध है। ईरान और चीन की ओर से परस्पर संबंधों को विस्तृत करने पर जोर कई आयामों से समीक्षा योग्य है। पहली बात तो यह है कि अपनी भौगोलिक स्थिति, तेल और गैस के बड़े बड़े भंडारों, कई प्रकार की खानों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी भूमिका के कारण ईरान चीन के लिए बहुत महत्व रखता है। यही कारण है कि हालिया वर्षों में अमेरिका की ओर से ईरान के विरुद्ध अत्यधिक दबाव की नीति अपनाए जाने के बावजूद चीन इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ अपने संबंधों को विस्तृत करने पर बल देता आ रहा है। ईरान की ओर से चीन के लिए तेल की सप्लाई अब भी जारी है। चीन ने इस बारे में अमेरिकी धमकियों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर ईरान आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, ऊर्जा, निर्माण, कृषि और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने की महत्वपूर्ण क्षमताएं रखता है। एक अन्य विषय यह है कि पश्चिमी एशिया में कोई भी देश शिक्षित अधिक जनसंख्या, विशेषज्ञों की बड़ी तादाद, विस्तृत भूभाग और मजबूत आधारभूत ढांचे की दृष्टि से ईरान के जैसा नहीं है। दूसरा वो विषय जिसने चीन के निकट ईरान के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है वो है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम के वर्चस्व के मुकाबले में दोनों देशों के समान दृष्टिकोण। दोनों ही देश एक ध्रुवीय व्यवस्था के मुकाबले में बहुध्रुवीय व्यवस्था के पक्षधर हैं। उनका प्रयास है कि अन्य देशों पर पश्चिमी मूल्यों और पश्चिमी संस्कृति को थोपने से रोका जाए। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका की ओर से चीन और रूस की कड़ी आलोचना इसलिए भी की जाती है कि दोनों ही देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम की उदारवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस संदर्भ में चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि खेद की बात है कि ये देश आज भी शीत युद्ध के गलत क्रियाकलापों पर बल दे रहा है। यही बात विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को नुकसान पहुंचाने का कारण बनी है। इन बातों के अतिरिक्त एक वो विषय जिस पर दोनों देशों का संयुक्त दृष्टिकोण है वो है अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की ओर से थोपे जाने वाले अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध। ये वे प्रतिबंध हैं जिनके कारण चीन और ईरान सहित प्रतिबंधों का दंश झेलने वाले देशों को बहुत क्षति हुई है। वैसे आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भी बीजिंग और तेहरान एक जैसी सोच रखते हैं। चीन के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में ईरान के प्रयासों की सराहना करते हुए परमाणु समझौते के यथाशीघ्र लागू किए जाने पर बल दिया है।
अमेरिका और यूरोपीय देश सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता भेजने के सिलसिले में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, जबकि इस बीच सीरियाई सरकार ने आतंकियों के नियंत्रण वाले इलाके में सभी सीरियाई जनता के लिए सहायता भेजने का सिलसिला आरंभ कर दिया है। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में 7.8 डिग्री का भीषण भूकंप आया था, जिसमें अब तक 41,000 से अधिक जाने जा चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अब किसी के जीवित बचने की आशा बहुत कम है। समीक्षा पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
अमरीका और यूरोपीय देश सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में मानवीय सहायता भेजने के सिलसिले में लगातार बहानेबाजी कर रहे हैं, जबकि इस बीच सीरियाई सरकार ने आतंकियों के नियंत्रण वाले इलाके में भी सीरियाई जनता के लिए सहायता भेजने का सिलसिला शुरू किया है। 6 फरवरी को सीरिया और तुर्की में 7.8 डिग्री का भीषण भूकंप आया, जिसमें अब तक 41,000 से अधिक जाने जा चुकी हैं। हजारों की संख्या में लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। हालांकि अब किसी के जीवित बचे होने की आशा बहुत कम है। सीरिया के सिलसिले में असली मसला यह है कि इदलिब और हलब के जिन इलाकों में भूकंप से भारी तबाही हुई है, उन इलाकों पर उन चरमपंथियों का नियंत्रण है जो तुर्की और पश्चिमी देशों के समर्थन से सीरियाई सरकार और जनता के खिलाफ लड़ते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रविवार को एक बयान में कहा कि आतंकियों के नियंत्रण वाले इलाकों में बचाव और सहायता अभियान में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। इस समय पश्चिमोत्तरी सीरिया के इलाके में 27 आतंकी संगठन हैं, जिनका संबंध दाइश और अलकायदा से है। इनमें सबसे प्रमुख अन-नुसरा फ्रंट है, जिसने अपना नाम बदलकर हयात तहरीरे शाम रख लिया है। इन इलाकों पर सीरियाई सरकार का खास नियंत्रण नहीं है, मगर सरकार को इन इलाकों में बसे आम लोगों की चिंता है। यहां काफी संख्या में लोग अभी मलबे के नीचे दबे हैं और शेष को मानवता प्रेमी सहायता की सख्त जरूरत है। सीरियाई सरकार ने मानवीय बुनियाद पर फैसला करते हुए बाबुसलाम और अल राई नाम के 2 पास खोल दिए हैं, जिससे गुजरकर मानवता प्रेमी सहायता भूकंप पीड़ितों तक पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है, मगर इसके बाद भी पश्चिमोत्तरी सीरिया के इलाकों में भूकंप पीड़ितों को 2 गंभीर समस्याओं का सामना है। पहली समस्या यह है कि इन इलाकों में मौजूद चरमपंथी संगठन अमानवीय हरकतें कर रहे हैं। आतंकी संगठन सहायता तो ले लेते हैं, मगर उसे भूकंप पीड़ितों के बीच नहीं बांटते। वे अपने आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस सहायता इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हयात तहरीर शाम संगठन के सरगना अबू मोहम्मद जौलानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता प्राप्त करके भूकंप पीड़ितों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है और वो आतंकी संगठन नहीं है। दूसरी समस्या यह है कि पश्चिमी देश मानवता प्रेमी सहायता भेजने के मामले में टाल मटोल से काम कर रहे हैं और आतंकी संगठनों के सरगनाओं से बातचीत के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने 2 पास खोलने के सीरियाई सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब सियासी खेल का समय नहीं है, इस समय सहायता की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि सीरियाई सरकार के साथ कुछ और भी रास्ते खोलने पर हमारी सहमति हो जाएगी।
लेह और करगिल की जनता ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। लेह और करगिल की प्रदर्शनकारी जनता की एक मांग ये है कि लद्दाख को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शनकारी लोगों और जनता ने भारत की केंद्र सरकार से अपनी मांगों को यथाशीघ्र स्वीकार कर लिए जाने की मांग की है।
अपनी 4 मांगों को लेकर लेह और करगिल की जनता ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया और केंद्र सरकार से इन मांगों को यथाशीघ्र स्वीकार किए जाने की मांग की। लद्दाख को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना, 6 शेड्यूल के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण दिया जाना, स्थानीय नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण और लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और करगिल और लेह के लिए अलग संसदीय क्षेत्र बनाया जाना, ऐसी 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन्हें लेकर करगिल और लेह के कुछ राजनेताओं, धर्मगुरुओं, छात्रों और छात्राओं ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। भाषणकर्ताओं ने कहा कि पहले हम जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों की उपेक्षाओं से तंग आ गए थे, लेकिन केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनने के बावजूद लद्दाख को अब भी कठिनाइयों का सामना है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लद्दाख में ट्राइबल जनसंख्या 95% से अधिक है, लेकिन इसके बावजूद लद्दाख को छठे शेड्यूल में नहीं रखा गया है, जबकि ट्राइबल आबादी वाले पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को ये दर्जा पहले ही मिला हुआ है। लेह और करगिल के शिक्षित युवा सरकारी नौकरियों में अपने लिए आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे लेह और करगिल निवासियों का कहना है कि बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद लद्दाख के पास केवल एक संसदीय क्षेत्र है। उनकी मांग है कि लेह और करगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र दिया जाना चाहिए, यानी संसद में लद्दाख के 2 प्रतिनिधि होने चाहिए। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
श्रोताओ, इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पौत्र इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम की शहादत का दिन है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को अत्याचारी खलीफा ने बहुत छोटी जेल में वर्षों बंद रखा और आपका अधिकतर जीवन जेल में ही व्यतीत हुआ। अब्बासी खलीफा हारून ने कि जो नहीं चाहता था कि जनता इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के ज्ञान और उनके शिक्षाओं से लाभ उठा सके, 25 रजब 183 हिजरी कमरी को एक साजिश रचकर आपको कैदखाने में जहर देकर शहीद करवा दिया। शहादत के समय आपकी उम्र केवल 25 साल थी।
इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम इस्लाम के एक महान व्यक्तित्व और शियों के छठे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के बेटे थे, जिन्होंने अपने पिता से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम 35 साल तक मुसलमानों के इमाम रहे और इस दौरान अधिकतर कैद खानों में रहे, जिससे पता चलता है कि उनके समय में अब्बासी शासकों का पैगंबर इस्लाम के परिजनों के बारे में रवैया बहुत ही अत्याचारपूर्ण था। लेकिन इसके बावजूद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने सच्चाई और सत्य की ओर लोगों के मार्गदर्शन का क्रम जारी रखा।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को सामाजिक व राजनीतिक तौर पर जागरूक करने की कोशिश की और उन्हें अब्बासी शासकों के भ्रष्टाचार से अवगत कराया। वो बनी अब्बासी के शासकों के कार्यों और उनके तरीकों को इस्लाम के विरुद्ध समझते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम 25 रजब 183 हिजरी कमरी को शहीद हुए थे, जिससे पूरा इस्लामी जगत शोकाकुल हो गया था।
हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर कुछ पुराने फ़िरकों और मतों की मजबूती और नए फ़िरकों के गठन के लिए महत्वपूर्ण काल रहा है। इस समय लोगों के बीच अलग अलग और विश्वास और तथा विचारधारा रखने वाले विभिन्न संप्रदाय उभरे और इमाम ने उनसे संघर्ष किया और बहस की। इनमें से कुछ संप्रदाय इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बने थे और उन्हें अंधविश्वासी संप्रदायों या बौद्धिक संप्रदायों में माना जाता था। वे ऐसे प्रतिभ्रष्ट थे जिन्होंने झूठे लोगों को अनुचित बर्ताव के साथ धर्म से दूर रखा। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के काल के संप्रदायों के अन्य गुट शिया पंथ की शाखाएं थीं जो इमाम के समय में बनी थीं।
अलग अलग शिक्षकों के साथ अलग अलग संप्रदायों ने اماموں کے اترادھیکاری ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس سمند میں عباسی خلیفہ نے جو علویوں سے بہت دشمنی رکھتا تھا ان میں سے کچھ جھوٹے دعوے داروں کا سمرتھن کیا اور انہیں معصوم اماموں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ایشوریہ مارگ درشکوں کو جیل میں ڈالنے اور انہیں قید کرنے اور لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی وجہ سے ہی بھرشٹ وچاردھارائیں استتو میں آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے سمپردایوں کے سمبندھ میں پرتیک سمپردائے کے انویائیوں کی آپتیوں اور سمسیاؤں کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے تو ان کی رائے اور ان کے وشواسوں کے بارے میں جاننا آوشک تھا اور پھر ترک اور دلیلوں کا سہارا لے کر اپنی بات پیش کی جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے پاس اس چھیتر میں اپار چھمتائیں تھیں جو انہیں سمجھا سکتی تھیں۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سمے کی پرستھتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پتا کے مارگ کو جاری رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسلامی سنسکرتی میں غیر اسلامی چیزوں کے پرویش کو روکنے تتھا اپنے انویائیوں کے سوالوں کے اتر دینے کو اپنی گتی ودھیوں کا آدھار بنایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سماج کی آوشکتاؤں سے پورن روپ سے اوگت تھے، اس لیے انہوں نے وبھن وشیوں کے بارے میں ششیوں کی پرشکشا کی۔
سنی مسلمانوں کے پرسدھ ودوان اور محدث ارتھات پیغمبر اسلام اور ان کے پرجنوں کے کتنوں کے گیاتا ابن حجر حیتمی اپنی کتاب سوائق المحرکہ میں لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اترادھیکاری ہیں۔ گیان پریپورنتا اور دوسروں کی غلطیوں کی اندیکھی کر دینے تتھا بہت ادھک دھیر کرنے کے کارن ان کا نام کاظم رکھا گیا۔ عراق کے لوگ ان کے گھر کو باب الحوائج کے نام سے جانتے تھے کیونکہ ان کے گھر سے لوگوں کی آوشکتاؤں کی پورتی کی جاتی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے سمے کے سب سے بڑے اپاسک تھے۔ ان کے سمے میں کوئی بھی گیان اور دوسروں کو چھما کر دینے میں ان کے سمان نہیں تھا۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سمے میں ابھرے پنتوں کے بارے میں ایک دھارمک وشیشجیہ حجت الاسلام رجالی تہرانی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعہ دھرم میں وبھن گٹوں اور سمپردایوں کا ادے ہوا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے کال میں پرستھتیاں اور بھی جٹل ہوتی چلی گئیں۔ دوسری اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارمبار قید میں ڈالے جانے کی وجہ سے شیعوں کے ساتھ ان کے سمبندھ لگ بھگ ٹوٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے آدھیاتمک سنکٹ میں تھے۔
دھارمک وشیشجیہ حجت الاسلام رجالی تیرانی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد چھ سمپردائے ابھر کر سامنے آئے۔ پہلا گٹ وہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام مہدی سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ امام کا ندن نہیں ہوا ہے اور وہ امام ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کا وعدہ پیغمبر اسلام نے کیا تھا، اور اس لیے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک رک گئے اور انہوں نے اگلے امام کو سویکار نہیں کیا۔
ایک انہی گوٹ جو سامنے آیا تھا اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام مہدی مان لیا تھا۔ حضرت اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے گنی اور ودوان بچوں میں سے تھے جن کا امامت پر کوئی دعویٰ نہیں تھا، لیکن ان کے ندھن کے بعد کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ اسماعیل نے دنیا نہیں چھوڑی، وہ ابھی جیوت تھے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ہیں جو ہمارے امام اور امام مہدی ہیں جن کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی مہدی موعود ہیں، اس لیے انہوں نے اسماعیلی سمپردائے کا گٹھن کیا۔
دوستو، اسلامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل کا سورگواس ہو گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود لوگوں کو انتم سنسکار میں آمنترت کیا اور ایک وستت انتم سنسکار کیا گیا اور امام نے آدیش دیا کہ اسماعیل کے تابوت کو زمین پر رکھا جائے اور چہرے سے کفن کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمبودھت کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ اسماعیل ہے، اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کو سویکار کرنے کو کہا۔ انہوں نے ایسا کئی بار کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسماعیل کا سورگواس ہو چکا ہے اور اب وہ زندہ نہیں ہیں۔
دھارمک وشیشج حجت الاسلام رجالی تہرانی کہتے ہیں کہ ایک انیہ سمپردائے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سمے میں ابھرا وہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت اسماعیل کی مرتیو کو سویکار کیا لیکن ان کے بیٹے محمد کو امام مہدی کے طور پر مان لیا۔ دوسرا سمپردائے ایک سموہ تھا جو عبداللہ ابن جعفر کو مانتا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پتروں میں سے ایک تھے۔ وہ عبداللہ افتح کے نام سے مشہور تھے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اترادھیکاری بھی ہیں، اس لیے انہوں نے فتحیہ سمپردائے کا گٹھن کیا اور اسی روپ میں انہوں نے کھیاتی بھی حاصل کی۔
حجت الاسلام رجالی تہرانی کہتے ہیں کہ دوسرے سمپردائے کا ماننا تھا کہ محمد ابن جعفر کو، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے انیہ بچوں میں سے ایک تھے، جو بہت سندر گوڑی اور ودوان تھے اور محمد دیباج کے روپ میں پرسدھ ہوئے، اپنا نیتا بنایا اور دوسرے گٹوں کو بھی یہی سکھایا۔ انتم سموہ جو بہو سنکھیک بھی تھے، وہ بھی جو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی امامت کو مانتے تھے اور کسی انیہ سمپردائے کا پالن نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے طے یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سمے میں شیعوں کے بیچ چھ سمپردائوں کا گٹھن کیا گیا تھا، یہ درشاتا ہے کہ یہ یگ بہت ہی سمویدنشیل تھا۔ دوسری اور عباسی خلیفاؤں مہدی اور ہادی عباسی سہید امام علیہ السلام کے دشمن اور وشیش روپ سے ہارون رشید امام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے امام کو اپنا پرتھم شریڑی کا دشمن مانا اور انہیں کئی بار قید میں ڈال دیا، حالانکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان سمسیاؤں پر جیت حاصل کرنے اور لوگوں کو وشدہ اسلام سے پرچت کرانے میں سکشم رہے۔
عباسی خلیفہ اپنی لوکپریتا اور اپنی سرکار کی ویدتا تتھا اسی پرکار لوگوں کے دلوں میں آدھیاتمک پربھاؤ کے لیے سوئم کو پیغمبر اسلام کا اترادھیکاری اور ان کا ونشج بتاتے تھے۔ عباسی خلیفہ پیغمبر اسلام کے چاچا جناب عباس کے ونشج سے تھے اور اس کا وہ پراچارک لابھ اٹھاتے اور سوئم کو پیغمبر اسلام کا اترادھیکاری بتاتے تھے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے پوتر پریجن حضرت فاطمہ کے ونشج سے ہیں اور ہر انسان کا سمبندھ اس کے پتا اور دادا کے ونش سے ہوتا ہے، اس لیے وہ پیغمبر اسلام کے ونش نہیں ہیں۔ اس پرکار کی باتیں کر کے واسطو میں وہ عام جنمت کو دگ بھرمت کرنے کے پریاس میں تھے، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوتر قرآن کا سہارا لے کر ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید سے، جو شاسترارتھ کیے ہیں، وہ خلافت کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام کا استان سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں میں امام علیہ السلام کی بڑھتی لوکپریتا سے عباسی خلیفہ گھبرایا ہوا تھا اور آخر میں اس نے جیل میں ہی زہر دے کر شہید کرا دیا۔
تو دوستو، ریڈیو تہران ایک بار پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دکھد اوسر پر آپ سب کی سیوا میں ہاردک سمویدنا پرسوت کرتا ہے۔
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आजकल।
दोस्तों, कार्यक्रम आज कल के कनेक्ट के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम पश्चिमी जगत में मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ के अनादर के कारणों की समीक्षा करेंगे।
समस्त मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार मान सम्मान एवं गौरव में रुचि रखते हैं। कोई भी अपमान एवं अनादर को पसंद नहीं करता। इसके बावजूद सम्मान की भी अन्य मानवीय विशेषताओं की भांति विभिन्न परिभाषाएं हैं। इस संबंध में मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि धन, पद एवं सुविधाओं में सम्मान होता है, इसीलिए वे अपने जीवन का अधिकतम समय धन प्राप्त करने एवं सांसारिक स्थान ग्रहण करने में बिता देते हैं।
कुछ लोग अपना सम्मान आत्मा की उत्कृष्टता एवं आध्यात्मिक विशिष्टता में देखते हैं। इस्लाम धर्म दूसरे दृष्टिकोण पर बल देता है और वास्तविक गौरव को आध्यात्मिक उत्कृष्टता एवं आत्मिक व नैतिक गुणों को प्राप्त करने में समझता है। कुरान मजीद में इस प्रकार के सार्थक एवं ईश्वरीय सम्मान की प्राप्ति के लिए भूमि प्रशस्त करने की शैलियों का उल्लेख है और इस संबंध में संपूर्ण कानून पेश किए गए हैं।
यहाँ हम यूरोपीय देशों में फैल रही मॉडर्न जिहालत या धार्मिक विश्वासों का उपहास बनाने और विशेष रूप से इस्लामी मान्यताओं का अनादर करने जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। हाल ही में स्वीडन की राजधानी में तुर्की के दूतावास के सामने कुरान मजीद को जलाया गया। ये जघन्य अपराध डेनमार्क की कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी स्ट्रैम कोर्ट्स के इस्लाम दुश्मन नेता रास्मस पलूदन ने अंजाम दिया, जिसकी अनुमति उन्हें स्वीडिश सरकार और पुलिस ने प्रदान की थी।
मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का अनादर करने वालों का दावा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें मुसलमानों के पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने की अनुमति देती है। हालांकि हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर प्रकार के आज़ादी की अपनी सीमाएं होती हैं, जबकि पश्चिम अपनी इस नीति को लेकर घोर विरोधाभास में जकड़ा हुआ है। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जब सिर्फ अभिव्यक्ति के कारण लोगों को जेलों की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाज द्वारा कुछ रहस्योद्घाटन के कारण यूरोपीय देशों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्हें किसी तरह से पकड़कर गैरकानूनी तरीके से अमरीका ले जाया गया। उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि उनके रहस्योद्घाटनों से कई पश्चिमी सरकारों के पाखंड से पर्दा उठ रहा था और इनके हितों को चोट पहुंच रही थी। यानी जब कभी भी और जहां कहीं भी बात हितों के टकराव की आती हो तो पश्चिम फिर आज़ादी के सारे नियम और कानून ताक पर रख देता है और उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन अपने विरोधियों के हितों को निशाना बनाना हो या मुसलमानों के धार्मिक विश्वासों का अनादर करना हो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे बड़ा सैद्धांतिक मुद्दा बन जाता है।
स्वीडन में कुरान जलाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये घृणित कार्य वहाँ पर किया जा चुका है, बल्कि हालिया वर्षों में दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत यानी इस्लामोफोबिया और उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि आज का इंसान खुद को किसी भी दौर के इंसान की तुलना में सबसे सभ्य मानता है, इसके बावजूद इस तरह की अनैतिक और अमानवीय घटनाओं में वृद्धि दर्ज की जा रही है। जनवरी सन 2023 की इस घटना से पहले पिछले साल अप्रैल में डेनिश स्वीडिश चरमपंथी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वीडन के ओरेबो शहर में कुरान जलाने की एक रैली का आयोजन किया था। पुलिस से अनुमति लेकर आयोजित की गई इस रैली में मुसलमानों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान को जलाया गया, जिसके बाद इसका व्यापक विरोध भी हुआ।
پلودن اور ان کے سمرتھک اس سے پہلے بھی فرانس اور بیلجیم جیسے یورپی دیشوں میں اسی طرح سے پوتر قرآن جلانے کی کوششیں کر چکے ہیں۔ پلودان مسلم اور اپرواسی ورودھی راجنیتی کے لیے کخیات ہے۔ 2017 میں پہلی بار پلودان نے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے اور قرآن کو جلانے کے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے تھے۔ ڈنمارک میں نسلواد سمیت کئی اپرادھوں کے کارن پلودان کو 2020 میں ایک مہینے کی جیل ہوئی تھی۔
2018 میں اس ڈینش سویڈش چرم پنتھی نے ایک ویڈیو جاری کر کے یہ کہا تھا کہ اسلام اور مسلمان ہمارے دشمن ہیں، سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ اس دھرتی پر ایک بھی مسلمان نہ رہنے پائے، تبھی ہم اپنا مقصد پورا کر سکیں گے۔ اسی طرح کے نفرتی بیانوں کے چلتے فرانس نے پلودان کو اپنے یہاں سے ڈپورٹ کر دیا تھا اور سویڈن نے 2 سال تک دیش میں گھسنے پر پرتیبندھ لگا دیا۔ ان سب کے باوجود اس چرم پنتھی نے نفرتی بیانوں اور مسلمانوں کی دھارمک بھاوناؤں سے کھلواڑ کا سلسلہ ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ پلودان نے 2017 میں اسٹرام کورس یا ہارڈ لائن پارٹی کی استھاپنا کی تھی۔ یہ پارٹی 2019 میں ڈنمارک میں چناؤ لڑ چکی ہے۔
یہاں سوال یہ ہے کہ یورپی دکشن پنتھی قرآن کو جلانے پر آگرہ کیوں کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ دھارمک گرنتھ ہے جس میں ایشور کی اور سے انسان کا مارگ درشن کیا گیا ہے۔ قرآن کا ادیش انسان کو نیتک گنوں سے سسجت کرنا اور اسے ایسا سیدھا راستہ دکھانا ہے جس پر چل کر وہ دنیا اور آخرت میں واستوک سفلتا حاصل کر سکے۔ اسلام کئی صدیوں سے دنیا میں موجود ہے اور وہ اسی پوتر گرنتھ کے ذریعے مسلمانوں کا مارگ درشن کرتا رہا ہے۔ قرآن کی آیتیں صرف عبادت کا پاٹ پڑھانے تک سیمت نہیں ہیں بلکہ وہ انسان کو اچھا جیون بتانے اور آپسی میل جول اور لین دین کے سدھانتوں کی بھی شکشا دیتی ہے۔ قرآن ہمیں سوستھ سماج کے گٹھن کے لیے ویکتیگت اور ساموہک سمبندوں کے طور طریقے سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں ایسی حکومت کرنے کے گر سکھاتا ہے جسے مانوتا کا کلیان ہو اور سبھی انسان نیائے اور آزادی سے جیون ویاپ کر سکیں۔
پوتر قرآن کے مطابق خدا نے سبھی انسانوں کو سمان پردان کیا ہے، سبھی انسان سمان کے یوگی ہیں، اس لیے ان کا اپمان اور ان کے وشواسوں کا انادر ٹھیک نہیں ہے۔ بدھی بھی اسے غلط ٹھہراتی ہے۔ قرآن میں کسی کو بھی کسی غیر مسلم کا اپمان کرنے کی انومتی نہیں دی گئی ہے۔ یہ ایشوری پستک صرف لوگوں کو اچھائی کا ہی نمنترن دیتی ہے اور ایک دوسرے کا سمان کرنے پر بل دیتی ہے۔ قرآن کی نظر میں ایسی کوئی بھی جگہ جہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں سمان جنک ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا چرچ ہو یا کوئی انی اپاسنا استھل۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کو انیکیشور وادیوں کے دھارمک وشواسوں کا انادر کرنے کی انمتی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا مت کہو، کیونکہ سمبھو ہے کہ پھر دوسرے بھی ایسا ہی کریں۔
ان واستوکتاؤں کے مد نظر یہ گمبھیر سوال اپنی جگہ پر باقی ہے، کیونکہ کچھ لوگ نفرت اور پورواگرہ سے گرست ہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب کو جلانے اور اس کا انادر کرنے پر اڑے ہوئے ہیں جو تارکیک گفتگو پر بل دیتی ہے اور سبھی کو شانتی کا سندیش دیتی ہے۔ کیوں ایسے لوگوں کے خلاف ابھیویکتی کی آزادی کے بہانے کڑی کاروائی نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا قرآن کو جلانا ایسے لوگوں کی مانسک ستھی کو ظاہر نہیں کر رہا ہے؟
امریکہ اور یورپ میں اس طرح کی گھٹناؤں میں وردھی نے لوگوں کو چنتت کر دیا ہے کہ پشچم اب کس دشا میں آگے کی اور بڑھ رہا ہے۔ کیا اس کا مکھیہ کارن اسلام کا تیزی سے پھیلنا ہے جس کی وجہ سے ان کے ورودھی ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں؟ اس سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ورتمان سمے میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ویاپک دشپرچار کے باوجود دنیا، وشیش کر پشچمی دنیا میں بڑی سنکھیا میں لوگ اسلام دھرم کی اور آکرشت ہو رہے ہیں۔ اسلام ورودھی شکتیاں तार्किक रूप से उसका रास्ता रोकने में असमर्थ हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने अपमानित करने और मजाक उड़ाने का रास्ता अपनाया है। हालांकि इसका भी उल्टा असर हो रहा है। जहां लोगों में इस्लाम की शिक्षाओं को लेकर जिज्ञासा बढ़ रही है, वहीं पर इस्लामी जगत में जागरूकता भी बढ़ती जा रही है।
इस सवाल का जवाब किसी हद तक 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन के कथन से भी मिल जाता है। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश साम्राज्य को मुस्लिम देशों में अपना साम्राज्य स्थापित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो ग्लैडस्टोन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कुरान को हाथ में उठाकर कहा था, जब तक कुरान मुसलमानों के जीवन का सिद्धांत है, उस वक्त तक ईसाई जगत के सामने बड़ा खतरा है। तुम ईसाई राजनेताओं के लिए जरूरी है कि कुरान को जलाओ।
निसंदेह कुरान जलाने से ग्लैडस्टोन का तात्पर्य सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, बल्कि ऐसी शिक्षाओं का मुकाबला करना है जो लोगों को दास बनाने, उनका शोषण करने और उन पर अत्याचार करने के खिलाफ है, और वह ऐसा करने वाले अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष की दावत देती है। कुरान से दुश्मनी का मुख्य कारण यही है कि उसकी शिक्षाएं लोगों के दिलों में न बैठ जाएं और लोग अपने अधिकारों को लेकर कहीं जागरूक न हो जाएं।
वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह नासिर मकरिम इस संदर्भ में कहते हैं, इस्लाम ने दूसरों के धार्मिक विश्वासों को अनादर करने को हराम करार दिया है, चाहे वे बुतपरस्त या अनेकेश्वरवादी ही क्यों न हो, क्योंकि इस्लाम का उद्देश्य लोगों का मार्गदर्शन करना और उन्हें कल्याण और मोक्ष की ओर ले जाना है। अनादर या अपमान अशिष्टता, कमजोरी और अतार्किकता का प्रतीक है। एक तर्कसंगत व्यक्ति जानता है कि अगर वो किसी के धार्मिक विश्वासों का अनादर करेगा तो दूसरे लोग भी प्रतिक्रिया देंगे और उसके धार्मिक विश्वासों को निशाना बनाएंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Thank you.